नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। अमेरिका ने ईरान के खड़ग द्वीप पर भीषण बमबारी की। द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया। भारत ने नियमित वीजा और ई वीजा की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों के कारण भारत में फंसे विदेशियों के लिए तय समय से अधिक ठहरने पर लगने वाले जुर्माने को माफ किया। नेपाल ने ईरान के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा सुविधा समाप्त की। रूस ने यूक्रेन द्वारा ब्रांस्क शहर पर स्टॉर्म शैडो और स्कल्प क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल पर विरोध व्यक्त किया। हमलों में कई नागरिक हताहत। और भारत ने इटली को 1-0 से हराकर FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की महत्वाकांक्षा पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने और इसराइल को नष्ट करने की थी, लेकिन अब उसकी ये योजनाएं खत्म हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीकी केंद्रीय कमान ने ईरान के खड़ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा बमबारी अभियान चलाया। उन्होंने इस अभियान में द्वीप पर मौजूद हर सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से नष्ट करने का भी दावा किया। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये इस क्षेत्र के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जानबूझकर द्वीप पर मौजूद तेल अवसंरचना पर हमला नहीं किया। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हथियार दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक हथियार हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने पश्चिम एशिया में 2,500 मरीन सैनिक और एक युद्धपोत भेजने का आदेश दिया है। तेहरान में हजारों लोगों की फिलिस्तीनियों के समर्थन में आयोजित वार्षिक रैली के दौरान एक भीषण विस्फोट हुआ। इसराइल ने मध्य तेहरान के इस क्षेत्र को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। ईरान ने इसराइल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले जारी रखे हैं। ईरान ने होर्मोज जल डमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। इसके बावजूद अमरीकी और इसराइली युद्धक विमान ईरान में सैन्य और अन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। लेबनान में लगभग 800 लोगों के मारे जाने से मानवीय संकट गहरा गया है। 800,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्ला आतंकवादियों के खिलाफ लगातार हमले किए हैं। आगे भी हमलों के जारी रहने की चेतावनी दी गई है। समाचार कक्ष से फरहत नास।
भारत ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर ईरान से ऊर्जा और माल के निर्बाध आवागमन के महत्व पर प्रकाश डाला है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत में ईरान सहित इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की प्राथमिकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हमलों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें ताकि कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि होर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज और पूर्व में भारतीय ध्वज वाले 3 जहाज मौजूद हैं। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों के कारण भारत में फंसे विदेशियों के नियमित भारतीय वीजा और ई वीजा की अवधि बढ़ाने और अधिक समय तक ठहरने पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने कहा कि 28 फरवरी के बाद प्रभावित विदेशी नागरिकों द्वारा अधिक समय तक ठहरने पर लगने वाला जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि प्रभावित विदेशी नागरिकों को निशुल्क निकास परमिट प्रदान किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को निशुल्क अस्थायी लैंडिंग परमिट प्रदान किया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
कतर की राजधानी दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कल लगभग 500 भारतीय नागरिक कतर एयरवेज की उड़ानों से कोच्ची और अन्य वैश्विक गंतव्यों के लिए रवाना हुए। कतर एयरवेज ने प्राकृतिक कारणों से मरने वाले 2 भारतीयों के पार्थिव शरीर और उनके परिवार के सदस्यों को मानवीय आधार पर कोच्ची तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की। दूतावास ने बताया कि कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से ही खुला है, इसलिए कतर एयरवेज द्वारा सीमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ओमान के सुहार में हुए हमले में दो भारतीय नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने शोक व्यक्त किया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मंत्रालय ने कहा कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों और नियोक्ता कंपनी के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। नेपाल के आव्रजन विभाग ने ईरानी नागरिकों के आगमन पर उनके लिए वीजा जारी न करने की घोषणा की है। विभाग ने नोटिस जारी किया है कि सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट धारकों को छोड़कर ईरानी नागरिक विदेश में स्थित नेपाली दूतावास से वीजा प्राप्त करने के बाद ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही नेपाल में आगमन पर वीजा के लिए पात्र न होने वाले देशों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या AR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस ने यूक्रेन के हमले में स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों को तलब किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा पश्चिमी शहर ब्रांस्क पर किए गए हमले में कई नागरिक मारे गए और घायल हुए। मंत्रालय के अनुसार मॉस्को में ब्रिटिश राजदूत निगेल केसी और फ्रांसीसी राजदूत निकोलस डी रिवियर को बुलाकर 10 मार्च को हुए हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। बलूचिस्तान के कई जिलों से लोगों की जबरन गुमशुदगी के ताजा आरोप सामने आए हैं। क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। इन घटनाओं ने क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों से पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए 9 लोग लापता हैं। प्रभावित परिवारों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने और लापता लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत निवेश, विनिर्माण और वैश्विक बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। NXT समिट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि हाल के वर्षों में भारत द्वारा संपन्न मुक्त व्यापार समझौते नए निवेश के द्वार खोल रहे हैं और नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
भारत निवेश और विनिर्माण के लिए आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन करके वैश्विक बाजारों में पैठ बनाने के अवसर हैं, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा घरेलू बाजार है और साथ ही दुनिया भर में हमारे लिए रास्ते बन रहे हैं। आज हमारे मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार का 2/3 हिस्सा कवर होता है, इसलिए हम वास्तव में भरोसेमंद भागीदार देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं।
और अब खेल समाचार के साथ हैं मुकेश कुमार।
असम के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मयंक राज्य के पहले और भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर हैं। 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती ने कल स्वीडन में 8वें ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अपना ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त किया। मयंक ने 9 में से 7 अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया। इस बीच भारत ने इटली को 1-0 से हराकर FIH हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हैदराबाद में कल भारत की मनीषा चौहान ने 40वें मिनट में विजयी गोल दागा। सलीमा टेटे की अगुवाई वाली भारतीय टीम आज शाम 7:30 बजे फाइनल में इंग्लैंड से खेलेगी।
श्रीलंका के कोलंबो में फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन है। ये भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों के उत्सव इंडिया वीक 2026 का जीवंत हिस्सा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने ईरान के खर्क द्वीप पर भीषण बमबारी की। द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया। भारत ने नियमित वीजा और ई वीजा की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों के कारण भारत ने फंसे विदेशियों के लिए तय समय से अधिक ठहरने पर लगने वाले जुर्माने को माफ किया। नेपाल ने ईरान के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा सुविधा समाप्त की। रूस ने यूक्रेन द्वारा ब्रांस्क शहर पर स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल पर विरोध व्यक्त किया। हमलों में कई नागरिक हताहत। और भारत ने इटली को 1-0 से हराकर FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।